आज एकादशी है ना, एकादशी के दिन ये कीर्तन गाते हैं वृंदावन में, अगर आप चाहे तो गा सकते हैं उसको। यस नो आई कैन सिंग इट बट इफ यू एग्री। Construction is going on. Now, what is it going on? हरे कृष्ण। आप लोग सभी ही इसी जगह में रहते हैं या
यहाँ भी रहते हैं?
ओ बेस से कोई आने ना?
बेस से नहीं है,
बेस फंक्शन रहते
हैं ना, सब यहीं पे रहते हैं।
क्योंकि काल मुझे कोई मिले थे ऐश्वर्य टेलिंग मी दैट ही विल बीइंग बेस
दैट इज द इवनिंग प्रोग्राम।
ही टोल्ड मी कम इन मॉर्निंग, आई टोल्ड कम 9 o'clock और सो। Almost 11 o'clock night, you are telling that can we join morning program also? Hare Krishna. Katwada jaga ka naam hai. Main yahan aaya tha lagbhag pata nahi 10-12 साल पहले, एक डॉक्टर सब्यसाची यहीं रहा होते थे, मैं यहाँ प्रधानंद महाराज होते बिग लेमन अच्छा है ना, नहीं अभी लेमन के बगीचा है ना, अभी यही है ना,
इधर पीछे की तरफ,
पीछे की तरफ गौशाला भी पीछे की तरफ। हरे कृष्ण। काठवाड़ा गौशाला भक्त वृंद को स्वागत है। तो आज एकादशी के कारण एक भक्त विनोद ठाकुर के शरणागति से एक भजन गाएंगे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन
Seva, Param Siddhi, Premalati Karam Mula, Bhagat Seva, Param Siddhi,
Thank you. सूत्र सत श्री सीमा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की नित्रिरापविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिभाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुवर्ण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की श्री जगन्नाथ देव भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की समवेत भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की युग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की इताय गौर हरि प्रेमानंदे। आज की षटतिला एकादशी है,
षटतिला
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके
भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवती नैष्ठिकी
भक्तिर्भवती नैष्ठिकी
श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ प्रथम स्कंद अष्टादश अध्याय श्लोक संख्या 48 48 आपके पास आपको पर्सनल पोथी होगा निकाल सकते हैं। सबके पास तो पर्सनल पोथी होता है ना आजकल आपके मोबाइल क्योंकि वर्स इज नॉट रिटन हियर। अगर आप आवृत्ति करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। हम तो आशा करते हैं कि आप लोग सब उसको आप याद कर ले, प्रत्येक व्यक्ति के लिए याद करने के लायक है। ओके, यू गॉट इट? तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्ता हतापि च नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपिह तिरस्कृता विप्रलब्धः सप्ताह क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपिः तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताक्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपिः। किसने आवृत्ति करना चाहता?
तिरस्कृता विप्रलब्धा तिरस्कृता विप्रलब्धा नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति
शब्दार्थ तिरस्कृता
अपमानित होकर
विप्रलब्धा
ठगा जाकर
सप्ता
शापित होकर
क्षिप्ता आक्षेप के कारण विचलित हताह अथवा मारे जाने पर अपि भी ना कभी नहीं अस्य इन कृतियों के लिए तत् उनको प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकार करते हैं
तत्
भगवान को
भक्ताः
भक्तगण
प्रभवो अपि
शक्तिमान होने पर भी ही निश्चय ही। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने पर भी अपेक्षित अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने के विचार नहीं करते। तात्पर्य ऋषि समीक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो, उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में साथ दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतः भक्तगण कभी भी निजी अपजस, साप या अपेक्षा उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक इसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीज़ें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। क्योंकि यह निजी मामला था, अतएव समीक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रूढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही आपने अधीनों को साप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह केवल भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में ही लगते हैं। हरे कृष्ण। सभी को कुछ समझ में आया? सुने ढंग से ना, दोबारा पढ़ू? अगर मैं पूछूं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिनका उल्लेख प्रथम स्कंद में हुआ है। तो परिस्थिति ऐसा था कि राजर्षि महाराज परीक्षित मृगया में गए थे शिकार करने के लिए, जंगल में, काठवाड़ में नहीं, वहाँ हस्तिनापुर के आसपास को जंगल में गए थे। तो वहाँ भगवत इच्छा से उनको शिकार तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन घूमते फिरते शांत क्लांत हो गए, प्यास लगने लगा और पानी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। तो दूर में एक आश्रम दिखाई पड़ा, अच्छे आश्रम था लेकिन ऐसे कंक्रीट बिल्डिंग नहीं था। तो वहाँ जा करके जब प्रवेश किया, आश्रम के वातावरण देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उसके अंदर प्रवेश किए, देखे कि एक ऋषि ने आँख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। वही आश्रम के अधिकारी थे, समीक ऋषि थे। तो उनको देख करके वो नहीं समझे कि वो ध्यान में है, बोल बैठा आँख बंद करके, तो पानी के लिए याचना किए, इधर उधर ढूंढे, कोई टैप नहीं मिला। तब जमाने तो टैप आदि होता नहीं करता था, कुआं की कोई मटका में रखे होंगे कई, वो तो नूतन थे, वो तो अतिथि थे। तो लेकिन कोई ढूंढे कोई नहीं मिले, और जो बैठे थे उनको आग्रह किया, आगाह किए है पानी के लिए, लेकिन वो सुनाई नहीं होता, ध्यान में बैठे थे। वो बोले ढोंग करता है, मैं आया अतिथि, मैं राजा हूँ, उनके आश्रम में पहली बार आया और मैं प्यासा हूँ, पानी थोड़ा सा, तो इतने भी नहीं करता, आसन फासन के स्वागत की बड़ी बात नहीं, अरे पानी एक गिलास में प्यासे नहीं पूछता है, कैसा है ढोंगी बैठा है, क्या फायदा है। तो उनको खराब लगा। तो इस प्रकार अनाचार से, इस प्रकार सही आचरण से उनको क्या कि राजा है, शस्त्र देने का अधिकार उनका है, उनके प्रजा होते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं मिला, बोले चलो ब्राह्मण है क्या करे, कि मरा हुआ सांप पड़ा था धनुष के नोक पर, उसको उठा करके उसके ऊपर डाल दिया, चल दिए। बोले क्या ब्राह्मण को करने, पानी गिलास नहीं था। तो उनका एक बेटा था, वो गृहस्थ थे, समिक्री उनका बेटा, वो खेलता था कहीं। तो उनको कैसे पता चला, इसने बताया कि तेरे पिताजी के तो ऊपर सांप फेंकती है, सांप तो उनके गले में सांप लटक रहा है। तो उन्हें इतने क्रोधित हो गया, रोने लगा और पता लगाने के प्रयास नहीं किया कि किसी ने ऐसा किया कि वो तुरंत क्रोध में आ करके आप जेने में इसे करके तुरंत अभिशाप देने लगा, बोला जो भी कोई हो मेरे पिताजी के प्रति इस प्रकार दुर्व्यवहार किया उसको आज से सातवां दिन में ऑर्डिनरी सर्प नहीं तक्षक सर्प दमन कर ले, उस हेवनली स्नेक होते स्वर्गीय सर्प तक्षक को बचने का और चांस नहीं है, यहाँ का सांप तो फिर भी कोई बच जाए इतने कड़े पॉइजनस नहीं होते, वो सांप दर्शन करके समृद्धि हो जाए, ऐसे मृत्यु दंड दे दिया अभिशाप। वो कुफिर दौड़ के आया तो अपने बेटा का रोने का आवाज सुन करके ध्यानग्रस्त पिता की ध्यान टूट गया, बेटा के रोने सुन करके बोल के देखा क्यों क्यों हरी आप जीवित है, उठ करके अपने मरा हुआ सांप को फेंक दिया, बोले क्या होगा ना ऐसे ऐसे, तो पता लगाए कि राजर्षि परीक्षित महाराज आए थे और आपने को बहुत धिक्कार किया, बोले धिक मेरा जीवन को, मैं उनके प्रजा हूँ, मेरे पास महाराज परीक्षित आए थे इतने बड़े भक्त इतने बड़े साम्राज्य के राजा कितने प्रजावत्सल राजा, वो मेरे आश्रम में पहली बार आए और प्यासी होकर आए, मैं तो उनको स्वागत आतिथ्य नहीं कर पाया, पानी भी नहीं पिला पाया, धिक मुझे बहुत अपने को धिक्कार किए। लेकिन अब जब पता चला बेटा को कि वो उनको मृत्युदंड का साप दे चुका है, बहुत दुखी, बोले तू नादान बालक कहीं के नहीं, खूब उनको डांटे, लेकिन क्या होगा साप दे चुका है, एक बार जो मुंह से निकल जाता है वाणी फिर उसका तो रिपेयरिंग नहीं हो सकता, बाकी कोई मशीनरी है उसकी तो रिपेयरिंग भले हो जाए, लेकिन ये एक मशीन ऐसा है मुंह बाघ वज्र उसको कहते हैं, जो अब गोली मारते हैं कि तीर धनुष कमान मारते हैं वो लाठी में पीटते हैं अस्त्र शस्त्र आदि से, वो शरीर में घाव करता है और घाव को ट्रीटमेंट करके सुखाया जा ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये जो वाणी मुंह से निकलता है वो शरीर में घाव नहीं करता, कोई ब्लीडिंग नहीं होगा, कोई जख्म नहीं होगा, कोई क्या बोलते हैं स्वेलिंग नहीं होगा, कुछ नहीं, वो सीधा सोल पर अटैक करेगा, घाव करेगा, आत्मा में घाव कर लेगा और उसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, हाँ। और उसको अब भले जा करके खूब माफी मांगो, पैर पकड़ो, कुछ भी करो, और भले बोल दे ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन आप तो ये तो रहेगा उसका मन में ठेस, तो रिपेयरिंग नहीं होता, केवल वाणी के अपव्यवहार के कारण बहुत बड़े अनर्थ हो सकता है, बहुत बड़े अनर्थ हो सकता है। अब समीक रिया जी सोच रहे हैं ये नादान बेटा मेरा आपने वाणी की दुरुपयोग करके ये साफ दे दिया, इतने बड़े महाराजा चक्रवर्ती नरेश उनकी वजह से संपूर्ण साम्राज्य प्रजा कितने कुशल में रहते हैं, धर्म अर्थ काम मुख्य सब ठीक ठीक से पालन हो रहा है, और ये नादान क्या क्या इसके कारण इसे कर दिया, बहुत दुखी हुए अनुतप्त हुए, बेटे को डांटे, लेकिन क्या करें उपाय नहीं कर चुका है। तो इसे कहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों का जो शक्ति था आपने वाणी के द्वारा दूसरे को दंडित करने का, उसी दिन से उसको विड्रॉ कर लिया, बोले ना आजकल के ब्राह्मण बहुत डिस्क्वालिफाइड है, उनको ये शक्ति नहीं होना चाहिए, मिस यूजिंग इट, तो इसलिए आजकल जितने ब्राह्मण है कुछ बोलने से कुछ काम नहीं करता, और तभी से वो शक्ति डिलीट कर देते। तो लेकिन उन्होंने सोचे कि मेरा ही बेटा है क्या इससे बचाव, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर कोई भगवान के चरण में अपराध करते हैं तो भगवान को प्रार्थना करने से थोड़ा बहुत कुछ भक्ति करने से वो माफ़ कर देते हैं, भगवान महान उदार है, बहुत उदार है भगवान, तो माफ़ कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्तों की चरणों के अपराध हो जाए वो भक्त भले माफ़ कर ले भगवान तो माफ़ नहीं करेंगे, भगवान माफ़ नहीं करेंगे, हील वेरी एंग्री, बहुत कठोर हो जाएंगे। तो मेरा बता तो कोई साधारण भक्त नहीं, ये तो साक्षात युधिष्ठिर और अर्जुन के पोता परीक्षित, दोनों कुल से भक्त और भगवान दोनों कुल से जुड़ा हुआ, ओहो इतने बड़े चक्रवर्ती राजर्षि परिकित महाभक्त को उनने ईसा कर दिया। तो मन में सोचते हैं कि अगर परिकित महाराज गुस्सा होकर जो एक्शन ले लें, गाली दे दें, डांटे पीटे या कोई बदले में अभिशाप वो भी दे दें, तब तो बच जाएंगे बेटा। कोई एक्शन को रिएक्शन हो जाए ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाए। तो आशा करते थे कि अगर कोई, जैसे हम किसी के साथ झगड़ते ना, अगर वो उल्टी हमारे साथ झगड़ा किए, हम किन के ऊपर कोई डांटे, कोई इसी दुर्व्यवहार किए, हमारे साथ इसी दुर्व्यवहार किए अगर करते, तब फिर दोनों समान है, कोई किसी के ऊपर एक न। तो अगर वो जैसा नादान लड़का मेरा किया उनके प्रति, वो अगर ऐसे मेरे लड़के को डांट पीट करो विषय कर दे देना, तब तो काम बन जाता, तो बच जाएगा लड़का। नहीं तो आध्यात्मिक बहुत बड़ी उनका बुरी दशा होगा। शारीरिक कुछ ना हो लेकिन उनका आत्मा का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता, ठप हो जाएगा। अप राध, राध शब्द का अर्थ होता है शांति। अप मतलब दूर हो जाना, उप मतलब निकट, अप मतलब दूर, अपर हो जाए शांति, आपका हृदय से चला जाए। तो इसलिए उन्होंने चाहते थे कि परीक्षित ऐसा कुछ अगर कर लें तो, लेकिन परीक्षित को पता नहीं था कि उनके बालक ऐसा क्या करके। तो उन्होंने एक अपने शिष्य को मैसेज देकर भेजे कि जाके बताओ कि मैंने नादान लड़का ऐसा किया, इस टेक समाक्षण मैसेज भेज रहे थे एक दूत के द्वारा। लेकिन मैसेज भेजते समय परीक्षित समीक ऋषि सोच रहे हैं, समीक ऋषि का ही श्लोक है, उनका भावना है, वो सोच रहे हैं कि मुझे पता है अगर ऐसा करें तो, कोई भक्त ऐसे करे रिएक्टिव एक्शन ले तब तो फिर प्लस माइनस, लेकिन मैं जानता हूँ परीक्षित महाराज साधारण राजा नहीं है, वो तो एक बहुत बड़े भागवत भक्त है। और भगवान के जो अच्छे भक्त होते हैं उनका लक्षण मुझे पता है, उनका सिम्टम्स होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, इस श्लोक में बताते हैं, तो मुझे पता है। एक अच्छे भक्तों का व्यवहारिक लक्षण यही होता है, तो कैसे एक्शन में क्या होता है, कैसे होते हैं अच्छे भक्त भगवान के, तो इस श्लोक में कहते हैं तिरस्कृता। सबसे पहले ये शब्द लाते हैं तिरस्कृता। तिरस्कृता शब्द तिरस्कार से आया है, तिरस्कार समझते ना, तिरस्कार ऐसी को कहते हैं। अभी तो अब केवल 15-20 लड़के हैं और 200-500 आपके जान पहचान लोगों के बीच में आपका नाम पकड़ करके आओ, आपको खड़ा करेंगे और ऐसे ही अपमान सूचक बात कहेंगे, आप उसके लायक नहीं, झूठा, ऐसे अपमानित करेंगे, तिरस्कार करेंगे, गाली देंगे, अपमानित बात कहेंगे, ऐसा लगेगा। कभी ऐसा हुआ आप लोग के साथ? तो किसी का एब्सेंट में कह देते होंगे, कोई किसी के सामने तो कभी कहें होंगे, तो दो चार फ्रेंड के सामने कोई बोल दिया होगा कभी कभार, नहीं आपस में कभी ऐसे हो जाता है। किसी को प्लीज डोंट माइंड, हम बहुत माइंड किया, क्यों बोला, माइंड कर जाता ना, कितने दिन तक बात ही नहीं करेंगे। अब के बड़े व्यक्ति बोल दे तो उस दिन खाना नहीं खाएंगे, रुट जाएंगे, सेवा में नहीं आएंगे, नहीं तो मुझे ऐसे कहेंगे भाई क्यों लग गई। सब लोग वो जा करके समझाना पड़ता है, भैया हो गया तो छोड़ दो। लेकिन जो अच्छे भक्त होते हैं उनका स्वभाव है यही, छोटी मोटी से कोई अपमानित नहीं, भली प्रकार से तिरस्कार सभा में बुला करके बिना मतलब उनको इसी गाली देना, वो गाली मतलब जिसको कहते हैं, जिस गाली बोली निकलने से आपको ब्लड खोल जाए, रक्त खोल जाए, ऐसी गाली ऐसी वचन कोई बोले और उसको आप पी जाए, सहन कर ले, मन में कुछ नहीं बुरा भाव लाए, ये भक्तों के लक्षण। इसके क्या क्या भक्तों के लक्षण बताऊं? सबसे पहले तिरस्कृता, तिरस्कार होने पर भी अपि शब्द सभी में लगेगा, इस श्लोक में लास्ट में अपि लगाया, अपि शब्द प्रत्येक शब्द में लगेगा, तिरस्कृता अपि, तिरस्कृत होने पर भी, क्या नहीं करते होने पर भी, ना नास्य तत् प्रतिकर्बन्ति तो कभी भी प्रतिकार का विचार ही मन में नहीं लाते, मैं कुछ उनके बदले में कुछ करूंगा, उनको भी गाली दूंगा, वो क्यों ऐसा के किसको कंप्लेन करूंगा, किसको बोल दूंगा, देख लूंगा कुछ बोले, ऐसा मन में सोचते भी नहीं, विचार ही नहीं करते। नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, प्रतिकार का विचार ही मन में लाते, विचार नहीं लाते। अलायक है, दुबला पतला है, शक्तिहीन है, गरीब है, तो क्या कर सकता है, तो क्यों मन में विचार लाएगा। बोले माटी कंडू, वो कुछ नहीं कर सकता। भैया कोई दमदार बड़े आदमी कोई है, राजा जैसा, वो आए कोई गांव के बेचारे गरीब, उस कारण तो थप्पड़ मार के चले जाए, वो कर सकता कुछ, वो सोच भी नहीं सकता, क्या करूँ, वो पिट के चले जाए, बोले मैं पिट गया उनके तरह, तो उनको तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन बोलते हैं कि नहीं, उनका प्रभाव था, शक्ति था, सामर्थ्य था। कोई व्यक्ति जिनको तिरस्कार किया जाए वो इसे लल्लू पंजू नहीं, वो भी काफी दमदार है, सामर्थ्यशाली है। अगर एक फोन करे तो सकड़ो खड़े हो सकते उनका हाथ में, मतलब इज नॉट ऑर्डिनरी, वेरी पावरफुल पर्सनालिटी, ऐसे कहते हैं। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति भी, सब कुछ शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी, अगर इस प्रकार के तिरस्कार अपमान को और सामना करे और मन में कभी भी प्रतिशोध लेने का विचार ही ना लाए, तिरस्कृता अपि, दूसरे शब्द बोलते हैं विप्रलब्धा अपि। विप्रलब्धा शब्द का अर्थ है चिटिंग, ठगे जाना। आप लोग का सबको चिटिंग हुआ है, होता ही रहता है आजकल दुनिया, तो प्रभुपाद कहते हैं दिस होल सोसाइटी इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चिटेड। कुछ ठगने वाले बैठे हैं, कुछ ठगे जाने वाले बैठे हैं, बस उन्हीं का संसार है ना। तो हम लोग तो बुरी तरह ठगे जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे किसी ने उनको ठगा और उन्होंने देखे कि मुझे ठग रहा, समझे जाने, लेकिन फिर भी कोई तिरस्कार प्रतिकार ना कर। जैसे आपने आजकल ये कौन सा फोन बोलते हैं, आईफोन का सबसे अपडेट मॉडल आजकल क्या है, 7 8 है क्या, क्या आई कंटैक्ट के दूसरा कुछ नाम निकला, आईफोन एक्स जिसका कीमत कम से कम 60-70 हज़ार तो होगा ही ना, और ज़्यादा, ओह मेरा अंदाज यहाँ तक नहीं गया था, 90,000 ओनली। और आप कहीं से लोन भी लिया, जमीन बाड़ी बेचा, अब लेकर खरीदने गया, उसके बिना जीवन कोई है ही नहीं, जीवन असंपूर्ण है, अपूर्ण है, इसे समझ करके, है ना। आजकल लड़के इसे समझ रहे हैं, उनके बिना तो जीवन में पूर्णता ही नहीं, तो इसलिए कर्ज फर्ज करके जोगाड़ जंत्र लगा करके जा करके उनको जो आपके मॉल है वहाँ से जाकर लिया और सुपर पैकिंग करके उनको उन्होंने दिया, अड़ा देकर इसको आप घर में जाकर 2-3 दिन तो उसको नाचा पैकेट को लेकर के, बाद में खोला या केवल पैकेट है उसके अंदर माल ही नहीं, फोन ही नहीं, अब कैसे लगेगा आपको। इसी देते हैं चिट्ठी, पैसा भी गया, सब कुछ किया, हंस हंस कस करके और चाय पानी पिला कर ढल दिया, आप क्या करें। तो ऐसे ठगा जाने पर भी और समझा ही इसी व्यक्ति ने इसी कारण से जान मुझे ठगा, तब भी बोलते चलो उनको साथ कोई आवश्यकता नहीं ठगने को। और उनके दोस्त लोग बोले अरे क्या हो गया, चलो कोई बात, सभी के सामने भी इस प्रकार बुरी तरह से ठगा जाने पर भी, चीटिंग किया जाने पर भी प्रतिकार का नहीं सोचा। तीसरे शब्द बोलते हैं सप्ता अभिशाप, कोई दोष नहीं है, बेवजह है, उनको अभिशाप दे दे। अरे कैसे मुझे कुछ कहती है, हम लोग तो अभिशाप तो कोई आजकल देने का शक्ति नहीं है, अभिशाप नहीं को देख मेरा मुर क्यों देखता है तुम्हें, वो देखा वो गाली तो कुछ बोला नहीं है, बिना बोले देखने से ही हमारा क्या हो जाता है, तो अगर बोली वाली हो जाए तो फिर क्या बात है, कि आपके समान कुछ उठा ले कुछ करे, है ना। सप्ता अभिशप्त होने पर भी नास्य तत्पति कुर्बंती, वो नहीं करते, उनका प्रतिकार करने के विचार नहीं करते। और क्षिप्ता, क्षिप्ता शब्द का अर्थ है आक्षिप्त, मतलब समझ रहे ना, क्षिप्ता मतलब अक्यूज्ड, अक्यूजिंग हिंदी में क्या कहना उसको, ब्लेमिंग, आक्षेप करना, यही आक्षेप, तो चालू भाषा में क्या बोले आरोप, गुड आरोप शब्द, आरोप लगाना और झूठा आरोप लगाना, बिना मतलब उनको बोला इसने बदमाशी किया, गड़बड़ी किया, और उनका हल्ला करके क्या क्या कर दिया, इसी बुरी तरह से बदनामी किया, कोई सत्यता नहीं, कोई गुमान नहीं, इस प्रकार के आरोप करना आक्षेप करना तभी भी बदला लेने के लिए सोचे। सत्ता खिता हता अपि, उनको कोई पीटे मारे तब भी बदला लेने का विचार ना करें, और बदला लेने का विचार ना करें, नहीं नालायक है उसका बस कुछ है ही नहीं, क्या करें बेचारे, बोले नहीं नालायक नहीं बिल्कुल सलायक, कैसे सलायक, न तद भक्ता, उनके भक्त प्रभवोपि ही प्रभावशाली है, एक तो स्वयं समर्थ है, बलवान है, शक्तिशाली है, धनवान है, सुत है, उसके ऊपर में उनके भक्त हैं, उनके पार्टी के लोग, जिनके सरकार कभी मिटता नहीं है, कभी चुनता नहीं, इटरनल गवर्नमेंट होल्डर, उनको कोई इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ता चुनाव नहीं जीतना पड़ता सरकार बनाने के लिए, उनका सरकार हमेशा रहता है, आप लोग चुन जाए या मर जाए उनका सरकार तो हमेशा रहता है, उनके सत्ता को कोई चुनौती दिया नहीं जा सकता, ऐसे सरकार मालिक उनके लोग हैं, तद भक्ता उन ईश्वर के भक्त हैं, इतने प्रभावशाली होते हुए भी क्यों क्योंकि उनके ईश्वर के ऐसे ईश्वर के भक्त है, इसलिए उनका एक विशेष गुण होता है कि ऐसे ऐसे स्थिति होने पर भी वो गुस्सा नहीं करेंगे, बदला लेने का भावना मन में नहीं लाएंगे, तो इसीलिए मैं जानता हूँ परीक्षित महाराज ऐसे भक्त हैं, वो तो मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेंगे, वो तो बोलेंगे मेरा है ठीक है, ये मेरे लिए तो होना चाहिए था, वो ऐसा ही किए परीक्षित महाराज, ऐसा ही किए, बहुत खुश हो गए जब उनको खबर मिला कि ऐसे ऐसे लड़का ने अब साफ दे दिया, वो तो नाचने लगे, वो सो नाइस, भगवान कितने कृपालु हैं, मैं तो कितने अहंकार से चूर हो रहा था, आपने मुझे ये सबक सिखाया, आज देख करके मैं तो भूल ही गया था मेरा प्रोजेक्ट, मैं राजपाट भोग में भूल चुका था, आप मुझे याद दिलाए साफ दिला करके कि परीक्षित व्हाट आर यू डूइंग, आप वीकेंड का नोटिस भेज दिया, आई एम सो फॉर्चुनेट, सचमुच जिनको मरने का वीक भर नोटिस आ जाए ना, इट इज रियली महासौभाग्य है, हम लोग तो पता नहीं कब हो जाएगा, 7 मिनट के साथ, दिन के साथ, साल 70 साल, हू नोस कब कहाँ कैसे हो जाए, लेकिन एटलीस्ट हमको पता ही चलेगा ना, सो ही मेजर ले लिया उन्होंने, कुछ व्यवस्था की, हम लोग को व्यवस्था करने का तो हमको पता ही नहीं व्यवस्था क्या, तो ये महाभाग्य है, लेकिन उनको परीक्षित महाराज को पता चल गया तो उतने खुश हो, तो इसी को बोलते हैं कि भक्त का लक्षण, तो अगर हम लोग सब उन तद्भक्ता, हम लोग तद्भक्ता तो हुए नहीं, तद्भक्त होने के लिए प्रयासरत हैं, है ना, नहीं प्रयास करने का जो प्रथम शुरुआत की कड़ी है, इसी को कहा जाता है छात्र स्टूडेंट लाइफ, छात्र जीवन, और इसी को ही अध्यात्म भाषा में ब्रह्मचारी लाइफ कहा जाता है। एक्चुअली ब्रह्मचारी इज नथिंग बट स्टूडेंट इन वैदिक लैंग्वेज। वैदिक भाषा में स्टूडेंट को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था, छात्र नहीं कहा जाता था, ब्रह्मचारी, क्योंकि पढ़ना ही ब्रह्मचारी पढ़ते हैं। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंती दांतर गुरु, गुरुकुल में ब्रह्मचारी रहते हैं तो गुरुकुल में तो स्टूडेंट रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल में। इसी स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचारी लाइफ मीन्स स्टूडेंट लाइफ। जैसे स्टूडेंट आगे चल करके शादीशुदा करते हैं गृहस्थ, तो ब्रह्मचारी का छूट है, वो शादी भी कर सकते नहीं भी कर सकते, स्टूडेंट कैसे स्टूडेंट होना चाहिए इस लक्षण है। और हम भौतिक कचड़े चीज को पढ़ने के लिए स्टूडेंट बनते हैं, इसलिए कचड़े बनते हैं, अच्छे चीज आत्मज्ञान को पढ़ने के लिए स्टूडेंट बनेंगे तो इनको ब्रह्मचारी। आत्मज्ञान के लिए संयम दान तो अपने इंद्रिय संयम का आवश्यकता है, सूची की आवश्यकता है, कई गुण का आवश्यकता रखते हैं इस प्रकार छात्रों की, तो ही ब्रह्मचर्य पालन करना तभी आवश्यकता पड़ता है। तो आप लोग इस भगवत ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, तो इसलिए आप ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए मन में ठान लिए हैं। स्टूडेंट का जो आवश्यकता है, स्टूडेंट लाइफ का, आध्यात्मिक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे पहले आवश्यकता है ब्रह्मचर्य पालन और इंद्रिय संयम। ये संयम का अंदर ही एक अंग है, ब्रह्मचर्य पालन इज पार्ट ऑफ सेंस कंट्रोल, तो ये करने के लिए सबसे पहले करो। लेकिन ये सब करके बनना कैसा है ये तो पता चलना चाहिए ना, कैसा बनना है, ऐसे बनना, ऐसे बनना। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए, अभी हम कैसे हैं, बाहर से तो पक चुके हैं लाल पीला वस्त्र से, लेकिन अंदर से कैसा है, ये अंदर की बातें बताया गया। अगर किसी को टेस्ट करना हो, जैसे कि बुखार है कि नहीं देखना, टेस्ट करना हो तो थर्मामीटर लगा लेते हैं, दो मिनट में आ जाता है टेम्परेचर कितना। तो आपके अंदर ऐसे भक्ति है कि नहीं, भगवान के कुछ भाव है कि नहीं, गिराने के लिए थोड़ा सा गाली दे दो, इस कोई मीटर से कोई एक लगा दो फिर दिख जाएगा, मीटर उठ जाएगा तुरंत, है ना, चार पांच बताएगा ना मीटर, इधर कुछ एक मीटर लगा दो फिर देखना कितने हैं पता चला। तद भक्ता प्रभाव देख ले जाएगा तुरंत प्रभाव पिया। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं उनके भक्ति करने के लिए, उनके भक्तों की गोष्ठी में हमारा नाम आएगा, हम उनके भक्त हैं, तो इसलिए इस गुण को अपनाना पड़ेगा, ऐसे स्वभाव ऐसे व्यवहार इस प्रकार से हम सीखना पड़ेगा। और अभी मार्केट में मतलब छोड़ा नहीं टेस्ट के लिए, अभी हम 10-5 के अंदर ही इसको टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि अभी मेरे पास कुछ इसको हुआ है ना नहीं, है ना नहीं। अभी सैंपल के तौर पर अभी तो मार्केट में इस क्वालिफाइड तो नहीं हुए, मैंने बाजार में ही भक्त के नाम में कहा जाएंगे, पहले तो ये टेस्ट करके देख लो भक्त है कि नहीं, 10-5 के बीच में 2-4-5 मीटर लगा दो, है ना नहीं, कई एक दिन डेली तो लगाते होंगे, ये सब आते हैं देखते भी होंगे, है ना नहीं, डेली एक्टिविटीज में कई बार उसका प्रयोग करते होंगे ये सारे आपको, और उसे पता भी चल जाता है, इसी पता भी चल जाएगा कि व्हाट वी आर डूइंग, रोस्टिंग आवर टाइम और व्हाट। तो इसलिए जानकार की सूचना प्राप्त करने के लिए आपके लिए ना हमारे भी है, अगर हम उनके भक्त कहलाने के लिए लायक मानना चाहते हैं अपने आप को, तो इसी प्रकार के दिस इज आवर मॉडल, दिस इज आवर सैंपल, ऐसे बनना होगा। जैसे जीवन में किसी का हर चीज में हर फेज में कोई अपने आप मॉडल बनाते हैं, मैं ऐसे भक्त बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, आई वॉन्ट टू बी लाइक ना। किसी के जीवन में अमिताभ बच्चन मॉडल होता है, किसी के जीवन में क्रिकेटर्स, कोई ऐसे किस 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 को अपना जीवन मॉडल बनाते हैं, तो इसलिए ई शुड हैव योर मॉडल दिस बरकित महाराज के, ये भाव ये मॉडल होना चाहिए क्या कृष्ण कैन बी देव, तब मुझे माना जाएगा कि मैं उनके भक्त हूँ, भगवान का भक्त हूँ करके मेरा टाइटल मिलेगा, मिलने तब कैसे मिलेगा। तो वी हैव टू प्रैक्टिस, ये सब उनका परिकित महाराज का जो गुण था, एक ये तो एक ही गुण के बताए कि उन्होंने किस प्रकार इस प्रकार उनके प्रति हुआ तो नॉन रिएक्टिव हुए, और उसको समीक ऋषि स्वयं बहुत बड़े समझे हुए ज्ञानी तपस्वी तपोघन ऋषि, ये उनका मतामत है कि भक्तों के गुण कैसा होना चाहिए। परिकित महाराज जैसे भक्त होते इसी प्रकार ही है, तो अगर अपना जीवन में राजर्षि परिकित को मॉडल बनाए, जिन्होंने कृष्ण के वंश के कृष्ण के कुल और कृष्ण भक्त के कुल से एकमात्र उदीयमान सूर्य थे, संतान बीजम कुरु पंडवाना, कुरुवंश और पंडुवंश दोनों से एकमात्र दयाल थे, और कृष्ण भक्त और कृष्ण की बहन सुभद्रा के पोते थे, हर प्रकार से सो ग्लोरीफाइड। तो ऐसे जैसे भक्त को मॉडल नहीं बनाएंगे और किसको बनाएंगे, तो इस प्रकार मॉडल को सामने रख करके उसे स्टार्ट आवर कैरियर, स्टार्ट आवर लाइफ एज ए ब्रह्मचारी और एज ए कर्मचारी व्हाट एवर, बट हमारा जीवन के लक्ष्य ब्रह्मचारी बनना है ना, क्या बनना है, भक्त बनना है, गुड। हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं कि हम ब्रह्मचारी बने रहे, नो, दिस इज द बिगिनिंग स्टूडेंट, नो द थिंग्स यू आर टू, भगवत प्रेम प्राप्त करना जीवन के हमारा प्रोजेक्ट है, लक्ष्य है, उसके लिए जो भी आवश्यकता है जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना है ना, ये अनुकूल वातावरण के लिए। अब क्या आपके वर्ण में आश्रम बनेंगे दैट डजंट मैटर, लेकिन गुण में तो ऐसा होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, ऐसे गुण नहीं होने से भक्तों के नाम से नहीं नाम उठेगा आपका, उन खाते में नाम नहीं उठेगा। ये ब्रह्मचारी गृहस्थ के खाते में आ सकता है नाम, लेकिन भक्तों के खाते में नाम नहीं आएगा। अब आपके ऊपर है, आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं या भक्त बनना चाहते हैं, इसे अप टू। हरे कृष्ण, किसी को कुछ समझ में आया, किसी को कोई शंका या कोई सुझाव? यस,
भागवतम का श्लोक है तो हर समय हर काम हर परिस्थिति में लागू होगा, और अभी जैसे अभी का जो समय जब हम सब प्रचार करने में लगे हैं, और अगर हम इस श्लोक के अनुसार जीवन जिएंगे तो कई लोग हमारा गलत फ़ायदा भी उठाएंगे, और हमें फिर हमारी सेवा में भी कभी कभी विघ्न आएंगे, तो हम इस श्लोक का पालन करेंगे तो अपने कभी कभी सेवा भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और गुरु के आदेशों का पालन भी कभी कभी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरे लोग हमें इतना नीचे ढकेलेंगे, तो वो उस समय क्या हो।
ये सुखदेव गोस्वामी व्यास जी समीक जी दे डिंट कंसल्ट मदन मोहन जी, ऐसे श्लोक भागवत में लिखते हैं, आपसे कंसल्ट नहीं कहते सर, एडिट करना पड़ेगा, ये चाहते ना आप। अगर ऐसे करेंगे ना तो दो चार साल में आपके नाम में पीछे महात्मा लग जाएगा, आपके गुजरात में एक व्यक्ति हुए थे, ही वाज जस्ट अ लायर, लेकिन कुछ गुण ऐसा उन्होंने अपनाया, थोड़ी साल में पूरे भारत विश्व में महात्मा करके आज तक लोग मानते होंगे, ठगा गया, हाउ कैन आई थिंक लाइक दैट। एक ही गुण उन्होंने अहिंसा को अपनाया था, सहनशीलता को अपनाया, महात्मा आज तक करके लोग बोलते ना नहीं उनको, क्या खूबी था, जस्ट ऑर्डिनरी लाइक दैट। ऐसा मत सोचिए कि हम ठगे जाएंगे बुरे जाएंगे, नहीं, आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है ना? हम हो नहीं पाएंगे, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन डोंट गिव दैट एक्सक्यूज, नहीं अगर हो जाऊंगा तो, अरे अगर होकर तो हो, तो देखते हैं क्या होता है, एक बार बनो तो सही। ओके तो आज एकादशी है। यस
महाराज, जैसे कि बताया कि ये सारे होने चाहिए भक्त के अंदर, तो फिर कोई, फिर हम ये गुण हमारे अंदर है या फिर हम ये होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, वो मतलब उसकी भेद रेखा कैसे
है? मैं तो बोला ना, टेस्ट करो, पता चल जाएगा, है ना? नहीं आज ही टेस्ट कर लो ना, आधा घंटा तो पता चल जाएगा, है ना? टेंड के प्रिटेंड ने सब पता चल जाए, प्रिटेंड पोस्टेंड। ओके, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसे केवल क्लास में सुनने के लिए नहीं कहा गया, मैं इसलिए बोला फॉर यू इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यू शुड अप्लाई एवरी डे योर लाइफ डे टू डे एक्टिविटीज, देन यू विल बिकम डिवोटी, है ना? यस।
जैसे बताया जाता है कि भाई गुरु की कृपा से सारे गुण आते हैं, गुरु या तो भगवान की कृपा से, और फिर ये भी बताया जाता है कि हमें प्रयास करना चाहिए सब, मतलब सारा, जैसे मैं कल से हो सकता है मॉर्निंग प्रोग्राम में रोज़ करूँगा, तो एक ये हो गया कि मुझे करना चाहिए, पर एक ये भी बताया जाता है कि भाई भगवान की कृपा से सब कुछ होता है, तो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज कैसे करने, कैसे प्रयास करना चाहिए?
दोनों नहीं, बात एक ही है, इसमें दो नहीं बात, आप जो कहते हैं दो नहीं, एक ही है, कृपा से ही सब कुछ होता है। कृपा प्राप्त करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, आप कृपा प्राप्त करना एक ही लक्ष्य रखो, इसी के लिए जो जो आवश्यकता करो ये सब कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता जाना आ जाए, है ना? लक्ष्य एक ही है, दो नहीं। मैं प्रयास करता हूँ, किस लिए करता हूँ? टू गेट हिज मर्सी, टू प्लीज हिम, दैट्स इट, ये सारे जीवन इसी के अंदर आ जाएगा, है ना? प्रयास ही कृपा पाने का ही एक पर्याय है, हम प्रयास क्यों करते हैं अदरवाइज, है ना? ऐसा समझ में, दो नहीं एक ही, अगर कुछ भी मिल गया आपके प्रयास से उसको ही मानना होगा, बहुत है कृपा, इनकी कृपा का फल मेरे से नहीं, मैं तो नालायक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज एकादशी है, चैंटिंग करना चाहिए, सो वी कैन डू आवर चैंटिंग, सेकेंड फेज में भी यू कैन स्टार्ट 12:30 और सो, फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, फिर उसके बाद देना है आपको, अब देन विल मीट इन इवनिंग, इज दैट ओके? थैंक यू।